İran Radio Podcast.
दोस्तों जितना पुराना इतिहास इंसान का है उतना ही पुराना युद्ध और शांति का भी है। जब से इंसान है युद्ध और शांति भी तभी से है। दुनिया में अलग अलग वजहों से जंगें लड़ी जाती रही हैं। धर्म के नाम पर लड़ी जाने वाली जंगों का एक सिलसिला था जिसे हम क्रूसेड्स के नाम से जानते हैं। क्रूसेड्स पॉडकास्ट का ये तीसरा एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूँ सैयद मीसम अब्बास। अगर आप दूसरे दिलचस्प विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर विजिट कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे क्रूसेडर आर्मी ने एक के बाद एक करके शहरों पर कब्जा किया। ये आर्मी जिस शहर पर भी कब्जा करती थी वहाँ बेतहाशा जुल्म ढाती थी। खासतौर पर यरूशलम में बहुत अत्याचार किया गया। इसके बाद उन्होंने पूरे फिलिस्तीन, सीरिया और यहाँ तक कि वर्तमान इराक पर भी कब्जा करने की कोशिश की। ये देखकर दूसरे मुस्लिम शासक जिनमें लड़ने की कुछ भावना बची हुई थी लड़ने के लिए आगे बढ़े। मोसुल के बहादुर शासक इमादुद्दीन जंगी अलेप्पो को क्रूसेडरों की घेराबंदी से आजाद कराने में सफल हो गए। अतारे फोर्ट अलेप्पो मोसुल मार्ग पर स्थित था और क्रूसेडर्स वहां से मुस्लिम ताजिरों के कारवां को लूटते थे। इमादुद्दीन जंगी अपने सैनिकों के साथ उस किले की ओर बढ़े। जब क्रूसेडरों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपने दूसरे साथियों से मदद मांगी। क्रूसेडर आर्मी की तादाद मुस्लिम सेना की संख्या से कई गुना बढ़ गई। हालांकि इमादुद्दीन ने जान हथेली पर रखकर पूरे जज्बे के साथ जंग की और क्रूसेडर्स को हराने में कामयाब हो गए। मुसलमानों के हाथों ये क्रूसेडर्स की पहली हार थी और यहाँ से मुसलमानों की जीत का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ समय बाद इमादुद्दीन की घरेलू साजिश के तहत हत्या हो गई। उनका मुल्क उनके दो बेटों के बीच बंट गया। मोसुल अल गाजी के हिस्से में चला गया और अलेप्पो पर नूरुद्दीन का नियंत्रण हो गया। इस दौरान अदेसा शहर को क्रूसेडरों ने घेर लिया। इस शहर के कई नागरिकों की गद्दारी के कारण क्रूसेडर आर्मी ने उस पर कब्जा कर लिया। तुर्की की छोटी सी सेना ने शहर के किले में शरण ली और प्रतिरोध किया। नूरुद्दीन भी अदेसा पर पुनः अधिकार करने के लिए अलेप्पो से अपनी सेना लेकर निकल पड़ा। शहर की घेराबंदी कर दी गई और घिरे हुए क्रूसेडरों पर दोनों ओर से तीरों से हमला किया गया। एक ओर किले के अंदर तुर्क थे और दूसरी ओर नूरुद्दीन की विशाल सेना जिसने उन्हें शहर के किले के बाहर घेर रखा था। आखिरकार क्रूसेडर्स घेराबंदी तोड़ने में कामयाब हो गए और वहां से भाग निकले। लेकिन तुर्कों द्वारा उनका पीछा किए जाने के कारण उन्हें भारी क्षति उठानी पड़ी। नूरुद्दीन ने अवसर का लाभ उठाया और अंताकिया की ओर आगे बढ़ा। उसने एक के बाद एक कब्जाए गए किलों और इलाकों को आज़ाद करा लिया। इस जवाबी कार्रवाई से घबराकर क्रूसेडर कमांडर्स यरूशलम में इकट्ठा हुए। उन्होंने मुसलमानों की जवाबी कार्रवाई का समाधान खोजने पर विचार किया। उन्होंने कुछ लोगों को चुना और उन्हें पोप और यूरोप के शासकों से सहायता मांगने के लिए यूरोप भेजा। ये डेलीगेशन पोप के पास पहुंचा। उसने पोप से कहा कि यूरोप से पर्याप्त सहायता नहीं पहुँची तो जल्द ही यरूशलम भी मुसलमानों के हाथों में चला जाएगा। पोप ने आर्च बिशप को एक पत्र लिखकर उनसे यूरोपीय राजाओं को इस जिहाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। पोप का पत्र पढ़ते ही बिशप फ्रांस के राजा से मुलाकात के लिए गए और उन्हें जिहाद के लिए उकसाया। ईसाई बिशप को एक सम्मानित और पवित्र व्यक्ति मानते थे। वो बहुत भावुक और कट्टर थे। अक्सर कहा करते थे कि वो अपनी भावनाओं को अपने निर्णय से आगे रखते हैं। उन्होंने दूसरा धर्म युद्ध शुरू करने का फैसला लिया और इसके लिए जी जान से मेहनत शुरू कर दी। बिशप ने सेंट्रल फ्रांस में एक बड़ी सभा का आयोजन किया जिसमें फ्रांस की महत्वपूर्ण हस्तियों को दावत दी। यहाँ तक कि फ्रांसीसी राजा भी इसमें शामिल हुए। उस बैठक में पोप का पत्र पढ़कर सुनाया गया और वहाँ मौजूद लोगों से पोप के आदेश का पालन करने को कहा गया। पोप ने यूरोप के सभी भागों में चार्टर भेजे जिसके मुताबिक दूसरे धर्म युद्ध में भाग लेने वालों को किसी भी प्रकार का कर देने से छूट का ऐलान किया गया था और उनके परिवारों और संपत्ति को चर्च का संरक्षण प्राप्त था। पोप ने लोगों से पुनः वादा किया कि अगर वे जिहाद में भाग लेंगे तो उनके अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी पाप माफ कर दिए जाएंगे। फ्रांस के राजा पहले से ही जियारत के लिए यरूशलम जाने का इरादा रखते थे, लेकिन अब पोप के आदेश के बाद उन्होंने वहां जाने का पक्का इरादा कर लिया। दूसरी तरफ आर्क बिशप ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधि भेजे और उनसे सभी लोगों को धर्म युद्ध के दूसरे चरण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने ब्रिटिश लोगों को एक पत्र लिखकर उन्हें युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया। आर्क बिशप ने इस पत्र में लिखा, हमारे पापों की वजह से क्रॉस का अपमान करने वाले दुश्मन उठ खड़े हुए हैं। हाथों में तलवार लिए मुसलमान इंतकाम के लिए पवित्र सरजमीन में दंदना रहे हैं। आप ताकतवर और बहादुर लोग क्या कर रहे हो? हे क्रॉस के सेवकों, कहाँ हो? बिशप जर्मनी गए और जर्मन ड्यूकों को लड़ाई के लिए उकसाया। वो जर्मन सम्राट कोनराड को धर्म युद्ध के लिए उकसाने में सफल रहे। उसके बाद कोनराड ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए धर्म युद्ध में भाग लिया। बिशप ने स्पेन को भी एक पत्र भेजा जिसमें वहां के शासकों और अहम हस्तियों से धर्म युद्ध में भाग लेने का आह्वान किया। उनके दूत स्पेन के राजा को धर्म युद्ध के लिए उकसाने में कामयाब हो गए। जर्मन सेना बड़े पैमाने पर लड़ाई शुरू करने के इरादे से हंगरी और बाल्कन की ओर बढ़ी। जब वो बाइजेंटाइन क्षेत्र में पहुंची तो उसके भीतर आंतरिक कलह शुरू हो गई। जर्मन पैदल सैनिकों ने एक यूनानी जादूगर को जादू टोना करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। वो लोग उसे आग में जला देना चाहते थे। शहर के लोग जादूगर के समर्थन में उतर आए और उन्होंने जर्मन सैनिकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस लड़ाई के बाद शहर को लूट लिया गया और आग के हवाले कर दिया गया। रास्ते में जर्मनों की स्थानीय लोगों के साथ झड़पें होती रहीं। यहाँ तक कि कॉन्स्टेंटिनोपोल के नज़दीक उन्होंने एक मठ को जला दिया और वहाँ मौजूद पादरियों को मार डाला। इसके बाद बाइजेंटाइन के सम्राट ने जर्मन सेना को कॉन्स्टेंटिनोपोल से गुजरने की इजाज़त नहीं दी। जर्मन सम्राट ने हार नहीं मानी और कॉन्स्टेंटिनोपोल की ओर प्रस्थान किया। 70,000 सैनिकों के साथ उसने बाइजेंटाइन के सम्राट के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, लेकिन आखिरकार उन्होंने एक समझौता कर लिया। इस समझौते के आधार पर जर्मन सेना शहर में प्रवेश नहीं करेगी और बदले में सम्राट उसे उपकरण और भोजन प्रदान करेंगे। कुछ दिन बाद जर्मन सेना एशिया माइनर में प्रवेश कर गई। उस समय फ्रांस के राजा भी कॉन्स्टेंटिनोपोल पहुंच चुके थे। बाइजेंटाइन सम्राट ने फ्रांसीसी राजा के साथ अलग व्यवहार किया। उन्होंने फ्रांसीसियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें शहर में इनवाइट किया, लेकिन सम्राट को क्रूसेडरों की मदद करने में बहुत दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि युद्ध के प्रथम चरण में क्रूसेडरों ने अपने वादे के बरखिलाफ एशिया माइनर के शहरों को मुसलमानों से छीन लेने के बाद उन्हें बाइजेंटाइंस को वापस नहीं किया था। दूसरी तरफ मुसलमानों के साथ समझौते की वजह से उनका क्षेत्र संभावित फ्रांसीसी हमलों से सुरक्षित हो जाता, इसलिए उन्होंने अरसलान सेल्जूक के साथ 12 साल के शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद बाइजेंटाइन सम्राट ने यूरोपीय लोगों से अपना पूर्ण समर्थन वापस ले लिया। दूसरी ओर जर्मन और फ्रांसीसी राजाओं के बीच प्रतिद्वंद्विता थी, जिसकी वजह से मुसलमानों पर पहले हमला करने से दोनों ही बच रहे थे। मुसलमान इलाके को अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने जर्मनों और फ्रांसीसियों पर घात लगाकर हमला कर दिया और उनका नरसंहार कर दिया। बड़ी जर्मन और फ्रांसीसी सेनाओं में बहुत ही कम सैनिक बचे और जो लोग भाग गए थे वो भूखे और प्यासे मर गए। जर्मन और फ्रांसीसी सेनाओं के बचे कुचे सैनिक बड़ी मुश्किल से यरूशलम तक पहुंच सके। वहां पहुंचकर उन्होंने दमिश्क पर हमला करने की योजना तैयार की। कुछ महीनों के बाद जर्मन सम्राट कॉनराड और फ्रांस के राजा लुई ने दमिश्क का रुख किया। उस समय दमिश्क पर तुर्क शासन के एक वजीर का शासन था। शहर को क्रूसेडर सेनाओं ने घेर लिया। मंत्री ने नूरुद्दीन जंगी से मदद मांगी। नूरुद्दीन एक बड़ी सेना के साथ दमिश्क के लिए रवाना हुआ। क्रूसेडर्स ने जब ये देखा तो उन्होंने घेराबंदी तोड़कर वापस लौटने का फैसला लिया। क्रूसेडर्स के पीछे हटने और जंग खत्म होने के बाद यूरोपीय सम्राटों ने अपना अपना रास्ता लिया। जर्मन सम्राट कॉनराड खाली हाथ अपने देश वापस लौट गए। फ्रांसीसी राजा लुई यरूशलम और अंताकिया के आसपास कुछ समय रहे और फिर फ्रांस वापस लौट गए। इस बड़ी हार से क्रूसेडर्स मुसलमानों के सामने अपमानित हो गए। मुसलमानों का मनोबल बढ़ गया और वो समझ गए कि एकजुट होकर वो ईसाई और क्रूसेडर्स हमलावरों को मात दे सकते हैं। वो ये भी समझ गए कि क्रूसेडर्स के बीच गहरे मतभेद हैं, इसलिए उनके मतभेदों को और हवा देकर वो उनके खिलाफ बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। इस हार के बाद क्रूसेडर्स के बीच मतभेद पहले से भी ज्यादा उभर कर सामने आ गए। उन्होंने हार का ठीकरा एक दूसरे के सिर फोड़ना शुरू कर दिया, जिससे उनके बीच रंजिश और भी बढ़ गई। इसके बाद जर्मन फ्रांसीसियों से उतनी ही नफरत करने लगे जितनी वो बाइजेंटाइन से करते थे। फ्रांसीसियों के दिमाग में भी ये बात घर कर गई कि ईसाइयों के लिए बाइजेंटाइन्स का खतरा मुसलमानों से भी ज़्यादा है और आने वाले किसी भी धर्म युद्ध से पहले उन्हें कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतना होगा।